भजन संहिता 77। भजन 77 पद 1। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वो मेरी ओर कान लगाएगा। यहां ध्यान दे, भजन 77 का प्रथम भाग प्रथम पुरुष मैं पर आधारित है। अच्छा होगा यदि आप जहां भी मेरा या मैं शब्द आया है उसे रेखांकित कर लें। पहला पूरा भाग मैं पर आधारित है। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा और वो मेरी ओर कान लगाएगा। भजन 77 पद 2 से लेकर 9 तक। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कहराता हूं, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरा मुंह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपनी गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूं और मन में भली भांति विचार करता हूं। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या ईश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? जब मेरा ध्यान स्वयं पर रहता है तब मैं परमेश्वर के एहसास को भूल जाता हूं और ऐसा लगता है कि मैं उससे अलग हो गया हूं। भजन 77 पद 10 से लेकर 12 तक। मैंने कहा, ये तो मेरी दुर्बलता ही है, परंतु मैं परमप्रधान के दैने हाथ के वर्षों को विचारता हूं। मैं या के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। भजन 77 पद 12 में फिर से परमेश्वर को संबोधित करने लगता है, तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और सोचूंगा। भजन का अंत उसके आरंभ से अधिक ज्योतिर्मय होता है, क्योंकि अब भजनकार का ध्यान मैं से हटाकर परमेश्वर पर आधारित है। बहुत बार हम कहते हैं कि प्रार्थना से हालात बदल जाती है और मैं भी यही विश्वास करता हूं, परंतु कितनी बार प्रार्थना ने मुझे या मेरे व्यवहार को बदला है? जब मैं प्रार्थना में होता हूं, परमेश्वर मेरे हृदय और व्यवहार को बदलने का कार्य कर रहा होता है। हमारा एक शराबी मित्र था, उसके परिवार में सदा ही झगड़ा होता रहता था। उसके परिवार में संकट एवं तलाक का खतरा मंडराता था। एक रात को दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला और उसे खड़ा देखा। उसने कहा, मुझे सहायता चाहिए, मेरी पत्नी मुझे छोड़ रही है, मेरा परिवार मुझसे प्रेम नहीं करता, हमारा अभी अभी बड़ा झगड़ा हुआ, मैंने फोन भी तोड़ दिया है, मुझे सहायता की आवश्यकता है, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है, मेरे लिए प्रार्थना करने को कोई नहीं है। मुझे नहीं पता प्रार्थना करने से उसका क्या अर्थ था। उसने कहा, कोई मेरे साथ बहुत देर तक प्रार्थना नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। मैंने कहा, आओ हम चर्च चलें। उस समय हम चर्च परिसर में ही रहते थे। मैंने कहा, जब तक आपको आवश्यकता है मैं आपके साथ रहूंगा। हम दोनों साथ साथ चर्च में गए। उससे तो शराब की भट्टी के समान महक आ रही थी। हम घुटनों पर आकर प्रार्थना करने लगे। मैं उसके बराबर में था। मैंने प्रार्थना करना आरंभ की, परंतु मैं उसकी प्रार्थना सुन रहा था। वो कह रहा था, ओ परमेश्वर, तू जानता है वे लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तू जानता है कि वे मेरे साथ कैसी नीचता दिखाते हैं। वे मुझे नहीं समझते। प्रभु, तू उन्हें जानता है कि वे कितने खराब हैं। मैंने उसको करीब एक घंटे तक इसी प्रकार प्रार्थना करते सुना, परंतु एक घंटे के बाद उसकी प्रार्थना में बदलाव आ गया। परमेश्वर, मेरा जीवन वास्तव में खाने पीने का रह गया है। मैंने तेरी सेवा नहीं की, जबकि मैं जानता हूं कि मुझे तेरी सेवा करनी चाहिए। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर, मैं चूक गया था। मैं पश्चाताप करता हूं, मुझे माफ कर दे। मैंने सोचा, हम अच्छी स्थिति में पहुंच रहे हैं। हमने अंतिम बार प्रार्थना की। पाप की सारी गंदगी जो उसके हृदय में उसके परिवार के लिए थी, अब जाती रही। अब वो अपने हृदय के विचारों पर आ गया। एक घंटा अपने लिए प्रार्थना करने के बाद उसकी प्रार्थनाएं फिर बदल गई। ओ प्रभु, तेरी सहायता के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरे प्यार के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं पिता। और जल्दी ही वो गहरी नींद सो गया। मैं कार्यालय में गया और वहां से कंबल लाकर उसके शरीर के ऊपर डाल दिया और घर चला गया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने पूछा, कैसा रहा? मैंने कहा, पक्की तौर पर नहीं जानता, परंतु मैंने उसे प्रभु में सोता छोड़ा है। मैंने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और ये भी कि कैसे उसकी प्रार्थनाओं में बदलाव आता गया, जो सुनने में अच्छा लगता था। दूसरी सुबह जब मैं चर्च गया, तब वो जा चुका था। हमारी भेंट और प्रार्थना का परिणाम क्या रहा? मेरे लिए ये एक भेद ही बना रहा। परंतु शाम को 5 बजे दरवाजे की घंटी फिर से बजी। मैंने देखा कि वो वहां सूट पहने खड़ा था। वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कहा, आज शाम को चर्च कितने बजे आरंभ होगा? परमेश्वर ने सच में उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए काम किया, परंतु ये तब हुआ जब उसने अपने ऊपर से आंखें हटाकर परमेश्वर पर लगाई और परमेश्वर ने कार्य आरंभ कर दिया। सच्चाई ये है कि हमें अपनी आंखें स्वयं से, अपनी स्थिति से और अपनी समस्याओं से हटानी होगी। हम इतने आत्म केंद्रित रहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं में भी यही झलकता है, मैं, मेरा, मेरा। परंतु जब हम स्वयं पर से अपनी आंखें हटाकर परमेश्वर पर लगाते हैं, सच में तभी परमेश्वर कार्य करता है। मेरे पैदा होने से पहले ही मेरा चचेरा भाई रीढ़ की हड्डी के क्षय रोग से मर गया था। मेरी बहन इस चचेरे भाई के काफी निकट थी, अतः उसको भी रीढ़ की हड्डी के रोग ने पकड़ लिया था। वो चलने फिरने से लाचार हो गई। उसकी आंखें अंदर धस गई, उसके दांत भिज गए और उसकी सांस रुक गई। मेरी मां बैप्टिस्ट चर्च जाते समय पेंटिकॉस्टल चर्च के सामने से गुजरती थी, जहां कभी कभी रुककर वो उनकी आराधना में सम्मिलित हो जाती थी। वो बैप्टिस्ट चर्च नहीं जाती थी। जब उसने अपनी बेटी को बुरी हालात में देखा और जानती थी कि डॉक्टर कुछ नहीं पाएंगे, वो दौड़ती हुई पेंटिकॉस्टल चर्च में गई, क्योंकि वो जानती थी कि पेंटिकॉस्टल जानते हैं कि प्रार्थना कैसे की जाती है। पादरी का घर चर्च के पास था। उसने जाकर दरवाजा खटखटाया और जब पादरी बाहर आया, उसने अपनी बेटी को पकड़ा और जैसे उसे दौरा पड़ गया हो, वो कहने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मैं चाहती हूं परमेश्वर मेरे बच्चे को चंगा करे। उसने मेरी बहन का अकड़ा हुआ शरीर नीचे लिटा दिया और पागलों की तरह रोने लगी। पादरी डॉक्टर मिजनेर ने मेरी मां से कहा, जवान महिला, अपनी आंखें अपने बच्चे पर से हटाओ और यीशु पर लगाओ, यीशु की स्तुति और आराधना आरंभ करो। हमारा मकान अभी बन रहा था, हम लोग होटल के कमरे में रह रहे थे। जब मेरे पिताजी लौटकर आए तब वो पूल खेलने के हॉल से वापस आए थे जहां वो अधिकतर समय बिताते थे और मेरी मां कमरे में नहीं थी। उन्होंने बरमादे में किसी से पूछा, क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है? एक नर्स ने कहा, हां मिस्टर सिमित, आपकी बेटी शायद मर गई है और आपकी पत्नी उसे लेकर दौड़ती हुई सड़क के पार शायद चर्च गई है, इसलिए मेरे पिता भी चर्च चले गए। मेरे पिताजी ये सोच रहे थे कि पादरी उसकी बच्ची को लेकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, परंतु जब उन्होंने उसे वहां देखा तो वो समझ गए कि अब बात मनुष्यों की वश में नहीं है और वो घुटनों पर आकर परमेश्वर को पुकारने लगे। पास्टर मेरी मां को प्रोत्साहित करता रहा, अपनी आंखें अपनी बेटी पर से हटाकर प्रभु पर लगाएं। मेरी मां ने अपनी आंखें प्रभु पर लगाना आरंभ की, परमेश्वर की आराधना आरंभ की और कहा, प्रभु यदि तू मेरी बेटी को फिर से मुझे दे तो मैं अपना जीवन तुझे दूंगी, मैं जीवन भर तेरी सेवा करूंगी, परंतु मेरी बेटी मुझे लौटा दे। उसी समय मेरी बहन की चेतना फिर आने लगी और वो तुरंत चंगी हो गई। वे उसे घर ले आए, वो हंस रही थी और पूर्णतः स्वस्थ थी। 2 महीने बाद मेरा जन्म हुआ। जब डॉक्टर ने आकर मेरी मां को बताया, आपका लड़का पैदा हुआ है, मेरी मां ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और कहा, प्रभु मैं अपनी मन्नत अपने बेटे के द्वारा पूरी करूंगी। मेरे पिता अस्पताल के हॉल में कहते रहे, प्रभु की स्तुति हो, लड़का हुआ है, यही कारण है कि मेरा पालन पोषण आत्मिक वातावरण में किया गया। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि स्वयं से आंखें हटाकर प्रभु पर लगाएं। वो परिस्थितियों को बदल देता है। मैं आपको बतलाता हूं, आप अपनी आंखें स्वयं पर और चारों ओर के वातावरण पर लगाते हैं और आप तेजी से नीचे गिरते जाते हैं। डूबने का इससे तेज तरीका कोई और नहीं है कि आप लहरों को देखें और अपने चारों ओर के वातावरण को देखें और स्वयं को देखें। यदि आप परमेश्वर पर आंखें लगाएं तो आप पानी पर भी चल सकते हैं। अतः भजनकार आरंभ में स्वयं पर आंखें लगाता है, मैं मेरा मेरा, परंतु भजन के मध्य में उसका ध्यान प्रभु की ओर जाता है। इस प्रकार भजन विजय घोष के साथ समाप्त होता है। भजन 77 पद 14 से लेकर 19 तक। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है, तूने अपने बुझ बल में अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा, मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले, भावंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था, जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई, तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पांव का चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। अतः चारों ओर की स्थिति को मोड़ दें, अपनी आंखें स्वयं से हटाकर प्रभु पर लगाएं और आप विजयी होंगे।